दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमने दक्षिण भारतीय भाषाओं के ऊपर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है और इसी क्रम में कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषा और साहित्य पर हम विषय विशेषज्ञों से चर्चा भी कर चुके हैं। तेलुगु भाषा की चर्चा न की जाए तो हमारा ये प्रयोजन व्यर्थ जाएगा, क्योंकि तेलुगु एक बहुत ही समृद्ध और मधुर भाषा है। इसीलिए दक्षिण भारतीय भाषाओं से निकट संपर्क स्थापित करने तथा उनके वांग्मय का परिचय लाभ अपने हिंदी श्रोताओं को सुलभ हो, इस दृष्टि से ही हमने इन कार्यक्रमों का आरंभ किया है। काफी समय तक कोरोना वैश्विक महामारी के प्रलयंकारी रूप को देखकर हम सभी इतना व्यथित और सहमे हुए से थे कि भाषा के कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसके लिए चुभन परिवार क्षमा चाहता है। आज तेलुगु भाषा और साहित्य पर चर्चा करने के लिए जिस विदुषी व्यक्तित्व को हमने आमंत्रित किया है, वे हैं अलूरु राधिका जी। आप लेखिका, पत्रकार, समाजसेवी एवं हिंदी भाषा की प्रचारिका व शिक्षिका हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाओं की जानकार हैं। आप विगत 25 वर्षों से हिंदी भाषा के प्रचार कार्य में लगी हुई हैं। आप युगमानस हिंदी पत्रिका की प्रबंध संपादक रहीं। आपकी 17 संपादित पुस्तकें कन्नड़ भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके अनेकों शोध लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी राधिका जी से तेलुगु भाषा और साहित्य पर चर्चा करेंगे बेंगलुरु से वरिष्ठ साहित्यकार अजय यादव जी। दोस्तों, पुडुचेरी से राधिका जी और बेंगलुरु से अजय जी को पॉडकास्ट से जोड़ते हैं और उनके संवाद को सुनते हैं।
राधिका जी नमस्कार।
नमस्कार सर,
आपका चुभन पर स्वागत है।
धन्यवाद सर।
जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने दक्षिण भारतीय भाषाओं की श्रृंखला पर कार्यक्रम किए हैं, जिनसे हमारे उत्तर भारत के हमारे श्रोता दक्षिण भारत की भाषाओं के साहित्य से रूबरू हो पाए। इसी क्रम में आज हम तेलुगु साहित्य पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं इस बात के लिए।
जी सर।
अच्छा राधिका जी, हर भाषा के उद्गम के लिए, हर भाषा की शुरुआत के लिए, हर भाषा के विकास के लिए, साहित्य के लिए कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो तेलुगु भाषा के लिए और तेलुगु साहित्य के उद्गम और विकास के लिए भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। क्या आप बता पाएंगे कि तेलुगु भाषा कैसे शुरू हुई और तेलुगु साहित्य का उद्गम कब और कैसे हुआ?
जी सर, तेलुगु भाषा भारत देश में बोली जाने वाली एक आधिकारिक बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा मानी जाती है।
जी,
तेलुगु भाषा कृष्णा गोदावरी नदी तट में बोलने वाले लोग वहां रहा करते थे। तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग कृष्णा गोदावरी नदी के आसपास में रहा करते थे।
जी।
तेलुगु भाषा के लिए एक और नाम भी सुनने में आ रहा है आजकल, देखिए वो आंध्र भाषा। आजकल की बात छोड़ दीजिए, मतलब पहले से भी आंध्र भाषा भी उसके लिए है।
अच्छा।
लेकिन यह आंध्र भाषा नाम जो है एक भाषा के द्वारा नहीं, बल्कि एक जाति के आधार पर, मतलब आंध्र जाति के आधार पर वह नाम पड़ा है।
अच्छा।
यानी आंध्र जो है उत्तर भारत से प्रवास में दक्षिण भारत में आकर स्थित लोग हैं।
अच्छा।
आंध्र जाति में कई प्रजातियां भी आती हैं। वैसे यानादि मूल पुरुष मानते हैं वैसे, तो यानादि का अर्थ होता है बेसिकली इधर उधर घूमते हुए, प्रवास करते हुए जीवन चलाने वाले
बंजारे किस्म के
तो
लोग।
उसमें जी सर, तो उसमें कई प्रजातियां भी हैं, उसके बारे में हम यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि उसकी जरूरत हमें यहाँ नहीं है। मानते हैं कि उनके द्वारा आंध्र आंध्र भाषा, आंध्र जाति के आधार पर आंध्र भाषा का नाम भी यहाँ पर आया है।
अच्छा,
और ये लोग यहाँ आके स्थित हो गए और यहाँ धीरे धीरे उनका शासन भी बढ़ता गया, उनका मतलब वे लोग शासन करने लग गए। और जब शासक बन जाते हैं तो राजभाषा के रूप में अपनी भाषा, मतलब अपनी भाषा को लाने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे उनकी भाषा तेलुगु नहीं थी, उनकी भाषा तो प्राकृत मिश्रित भाषा थी। तो वजह से प्राकृत भाषा को वहां लाने की कोशिश तो जारी रही, लेकिन वहां लोकली वहां रहने वाले लोग जो थे तेलुगु भाषा बोलने वाले थे। तेलुगु भाषा द्रविड़ उद्गम भाषा है और भाषा प्राकृत जो है, प्राकृत और द्रविड़ दोनों को, दोनों के मिश्रण से फिर एक भाषा का उद्भव हो गया, वो है तेलुगु भाषा।
अच्छा, तेलुगु भाषा के विषय में एक और बात कही जाती है कि आंध्र प्रदेश में तीन लिंग वहाँ स्थापित हैं और उनसे भी इसकी उत्पत्ति की कोई संबंध है।
बताऊंगी सर। हाँ सर, तेलुगु नाम किस प्रकार पड़ा उसके उसके लिए ये सब आधार है।
जी जी।
तो तेलुगु नाम जो है, किसके आधार पर तेलुगु नाम आया है, इसके लिए आप जो कहानी बता रहे हैं त्रिलिंग, त्रिलिंग जो है उसके द्वारा ही तेलुगु नाम आया होगा, यही बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा।
अच्छा।
तेलुगु जो है त्रिलिंग, त्रिलिंग का अर्थ होता है तीन लिंग। तीन लिंग यानी एक द्राक्षारामम, दूसरा मल्लिकार्जुन जहाँ श्रीशैलम में, श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, और तीसरा जो है कालहस्ती।
अच्छा।
इन तीनों लिंगों के द्वारा आच्छादित यह जो प्रदेश है, इस प्रदेश को त्रिलिंग देश कहा जाता था पहले, प्राचीन काल में यही यह नाम इस प्रकार था। और उसी को धीरे धीरे तेलुगु कहा जाने लगा, यह भी है इतिहासकारों के द्वारा इधर उधर लिखा गया है।
अच्छा,
और इस आजादी है। जी सर।
अच्छा, त्रिलिंग देश की भाषा तेलुगु हुई।
हाँ, त्रिलिंग से तेलुगु नाम आ गया होगा।
जी जी जी, ऐसा माना जाता है।
त्रिलिंग, त्रिलिंग देशम, तेलुगु देशम, इस प्रकार तेलुगु भाषा के लिए वह नाम आ गया होगा, यही माना जाता है।
अच्छा।
और प्राकृत मिश्रित तेलुगु जो है, वैसे जैसे मैंने कहा तो आंध्र विष्णु नामक एक व्यक्ति जो है, इन्होंने उस भाषा को बहुत प्रोत्साहित करते हुए, मतलब प्राकृत मिश्रित भाषा को प्रोत्साहित करते हुए, और द्रविड़ मिश्रित तेलुगु को भी, मतलब द्रविड़ मूल तेलुगु जो है उसको भी मतलब मेल जोल करते हुए उसका ज्यादा प्रोत्साहन किए हैं। तो इस कारण से आंध्र भाषा तेलुगु भाषा यही मानी जाती है, तेलुगु के लिए बहुत दूसरा नाम भी है।
जी जी जी। अच्छा, एक तेलुगु में एक विशेषता और पाई जाती है जो अन्य भाषाओं में नहीं है, कि तेलुगु भाषा साहित्य जो है प्रक्रियाओं के ऊपर चलता है, तो जो अन्य भाषाओं में नहीं है, तो तेलुगु साहित्य प्रक्रिया ये क्या है, इनके बारे में अगर बताएंगे तो अच्छा होगा।
जी सर। अब ऐसे तेलुगु साहित्य के बारे में बोलने लगेंगे तो आदि कवि जो है नन्नया को आदि कवि, और आदि काव्य उनके द्वारा रचित, मतलब पूरा उन्होंने नहीं लिखा है, वो भी तीन कवियों के द्वारा रचित है, लेकिन पहले उन्होंने शुरू किया, इसीलिए उनके नाम पर ही हम कहते हैं नन्नया। नन्नय भट्टू है उनका पूरा नाम जो है, नन्नय भट्टू, और इनके द्वारा महाभारत, आंध्र महाभारत कहते हैं इसको। आंध्र महाभारत को जो संस्कृत में लिखा हुआ महाभारत है उसका अनुवाद है।
अच्छा अच्छा।
तो इसको 11वीं
पर पुनः स्वागत है।
जी सर,
हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि आदि आदि काल जो है वो पहला साहित्य ग्रंथ रहा है तेलुगु का।
जी सर।
जी जी।
ये जो आदि काव्य है नन्नय भट्टू, इनका पूरा नाम है नन्नय भट्टू, नन्नय के द्वारा लिखित है। इन्होंने पूरा तो नहीं लिखा है, ये जो है, ये जो आदि काव्य है संस्कृत लिखित महाभारत का अनुवाद है।
अच्छा अच्छा अच्छा।
जी सर। तो इसका इसके 2.5 पर्व नन्नय ने लिखा, तिक्कना दो पर्व लिखे हैं और अरण्य पर्व जो है इन दोनों से छूट गया था, मतलब इन दोनों ने इसको नहीं छुआ था, इसको यर्रा प्रगति इन्होंने कंप्लीट किया।
अच्छा,
एक्चुअली अरण्य पर्व जो है बीच में आने वाला पर्व है, लेकिन तिक्कना इन्होंने इसको नहीं छुआ और इसको यर्रा प्रगति ने कंप्लीट किया।
अच्छा, आदिकाव्य पहला ग्रंथ बना तेलुगु
कवियों के द्वारा यह आदिकाव्य पूरा किया गया है और इस कारण से इसको कहते हैं, इन तीन तीनों को कहते हैं कवित्रयम।
कवित्रयम को कहते हैं। अच्छा
अच्छा कवित्रयम के द्वारा यह आदिकाव्य पूरा किया गया है।
अच्छा अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा दिलचस्प वाला विषय है कि एक काव्य जो है तीन तीन कवियों द्वारा लिखा गया।
जी सर, और वो भी आदिकाव्य माना जाता है और इसके लिए बहुत ही महत्व है। और 11वीं सदी में इस काव्य की रचना हुई है, उसके बाद से ही साहित्य का मतलब साहित्य की गति और तेजी होती गई।
उससे पहले तो साहित्य लिखा जाने
जी सर आधार तो 11वीं सदी से है, लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी में इतनी उत्कृष्ट रचना एक साथ वैसे आकाश में से वैसे उभर कर नहीं आ सकता, वैसे नहीं हो सकता है। तो जी, इसके जी। लिए मूल आधार कुछ तो होगा। इसका अच्छा, अर्थ अच्छा। है कि 11वीं सदी से पहले भी सारस्वत होता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आधार हमें नहीं प्राप्त है,
उसके लिए प्रमाण नहीं है हमारे पास,
प्रमाण नहीं है हमारे पास, यही कहा जाता है। हाँ, ये तो मानने की बात भी है वैसे।
अच्छा, तो इसी तेलुगु की प्रक्रियाओं में जो साहित्यिक प्रक्रिया है तेलुगु की, उसमें एक अवधानम प्रक्रिया का जिक्र काफी बार आता है, तो अगर अवधानम प्रक्रिया के बारे में अगर श्रोताओं को बता पाएंगे तो बेहतर होगा।
हाँ सर, वैसे संस्कृत में कई सारी प्रक्रियाएं हैं, हम जानते हैं, कविता, नाटक और वैसे जिन 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 प्रक्रियाओं को हम संस्कृत में देखते हैं वे सारे हैं आंध्र मतलब तेलुगु में भी।
तेलुगु, जी जी।
और यह अवधानम जो है वो भी संस्कृत में भी था, लेकिन संस्कृत में ज्यादा उसके लिए लोक मान्यता नहीं मिल पाई, क्योंकि भाषा तो उतना प्रचलित भाषा नहीं रह पाई ना, उतनी प्रचलित भाषा नहीं रह पाई, लोगों के बीच नहीं रह पाई। इस वजह से अवधान प्रक्रिया जो है संस्कृत में इतनी प्रचलित नहीं रही, लेकिन तेलुगु में आज भी सजीव है, जीवंत है। आज भी अवधान प्रक्रियाएं इधर उधर हम मंच पे देखते हैं। और अवधान जो होता है अवधानम, अवधान, अवधान का अर्थ होता है धारण कर लेना, धारण कर लेना यानी याद रखना, मेमोराइज करना।
अच्छा, अच्छा। तो याद करके बोलने की प्रक्रिया को अवधानम प्रक्रिया।
हाँ, मतलब नाम तो उससे आया है, नाम तो उसके आधार पर आया है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे अंश है जिसको पूरा करना एक कवि के लिए एक चुनौती ही माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पृच्छक, पृच्छक मतलब संस्कृत में कहा जाता है पूछने वाला।
अच्छा,
मतलब
अच्छा।
हाँ, कई सारे कवि लोग बैठे हुए रहते हैं मंच पर, एक एक अंश के लिए एक एक कवि मतलब अपना कार्य निर्वहन करते रहते हैं, तो ये सारे पृच्छक माने जाते हैं। इन सब के द्वारा कई ऐसे अंश मतलब जैसे धारण, निषिद्धाक्षरी, निर्दिष्टाक्षरी, दत्तपदी, समस्यापूर्णम, वर्णना और कई सारे जैसे कि छंदो भाषण, पुराण पठनम जैसे कि पुराण के बारे में बोलना पड़ता है, व्यस्ताक्षरी, ये सब मतलब निर्दिष्टाक्षर में जो है निर्दिष्ट अक्षर दिया जाता है उस पर उनको आशु कविता बोलनी पड़ती है। दत्तपदी जो है एक वाक्य को दिया जाता है और उस वाक्य को कौन सी पंक्ति में उनको रखना चाहिए ये भी बताया जाता है, उनको वही पर रख के उस कविता को सुनानी होती है। और
काफी मुश्किल प्रक्रिया होती है।
जी सर, के समस्याओं को एक साथ उनको सुलझना पड़ता है।
अच्छा,
एक
अच्छा।
साथ उनको धारण करके सुलझना पड़ता है, ये जैसे कि एक मिनी कंप्यूटर जैसे उनको काम करना पड़ता है।
अच्छा,
कंप्यूटर जिस प्रकार हम चार पांच विषयों को एक साथ दे फिर भी वो फिर धारण करके फिर हमें रिपीट कर देती है, मतलब काम कंप्लीट करके सुना, उसी प्रकार उनको काम करना होता है।
तो एक तरह से अवधानम में प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया होती है।
जी सर, प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया होती है और अंत में जो है इन सब चीजों को उनको दोहराना पड़ता है और वो भी जिस क्रम में वे उन्होंने पूछा है उसी क्रम में उनको फिर से बताना पड़ता है।
बेहतर बेहतर बेहतर
मान लीजिए कि उन्होंने एक 100 से ज्यादा प्रश्न किया हो तो उन 100 प्रश्नों को जिस
राधिका जी सुन रहे हैं आप?
हाँ सर, मैं बोल रही हूँ। हेलो, मैं सुन रही हूँ।
हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा,
जी सर।
आपने आपने अवधारणम के बारे में बताया और तेलुगु साहित्य में जैसे कवि काफी मशहूर काफी प्रभावी संत कवि हुए हैं उनमें एक नाम आता है वेमना का। तो वेमना जैसे संत कवि हैं जिन्होंने तेलुगु साहित्य में बहुत काम किया है, तो वेमना के कवि की रचनाओं का तेलुगु साहित्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका इसके बारे में अगर श्रोताओं को बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वेमना का नाम बहुत बार लिया जाता है तेलुगु साहित्य में।
जी सर, मैं बताऊंगी। वेमना के नाम से एक और बात मुझे बोलना होगा। शतक साहित्य, शतक साहित्य,
अच्छा,
शतक सो हम शतक से हमें क्या
सौ
मालूम
सौ
होता है? हाउ,
सौ जी जी
यही यही है, यही अर्थ में लेना होता है। शतक पद्य मतलब 100 पद्य, 100 पद्यों को जिस पुस्तक में या जिस ग्रंथ में लिखा जाता है उसको शतक मान सकते हैं।
अच्छा
यह एक प्रक्रिया
जी
है तेलुगु में। तो ये शतक साहित्य जो है आधुनिक काल में भी बहुत सारे लोग लिखे हैं और इसमें वेमना का नाम बहुत ही ज्यादा सुनने में आता है क्योंकि इनकी भाषा वैसी थी। इनकी
अच्छा
भाषा बहुत सामान्य भाषा में, लोगों को समझ में आने वाली भाषा में उन्होंने बता दिया है। और
अच्छा
जो शतक शतक जो होता है इसमें 100 नहीं होना चाहिए, यह एक नियम है। और ये एक पद्य में अंतिम पंक्ति में एक शब्द या एक पंक्ति पुनरुक्त होता रहता है। हर एक पद्य में पुनरुक्ति होती है इसकी।
अच्छा
इसको
अच्छा
मकुट कहते हैं, इसको कहते हैं
अच्छा
मकुटम।
मुकुटम,
मकुटम
अच्छा
जैसे
मुकुटम प्रक्रिया।
हिंदी में मुकुट मान लीजिए, मुकुट मतलब उससे आया होगा शायद, मकुटम
जी
कहते हैं इसको तेलुगु में। तो
अच्छा
यह कंपलसरी होता है और हर एक शतक कवि जो होते हैं इसको फॉलो करते हैं।
तो शतक के कवि में मकुटम प्रक्रिया आना जरूर आवश्यक है।
मकुटम जो है ये अंतिम पंक्ति में आना जरूरी है,
अच्छा
आवश्यक है।
अच्छा जी जी जी
जी सर
इसके अलावा तेलुगु साहित्य के विकास में जैन स्वावलंबियों का भी काफी योगदान दिया बताया गया है, क्या ये सही
जी
है?
सर
तो जैन
हाँ
स्वावलंबियों ने
सर
तेलुगु साहित्य में क्या योगदान किया, अगर इसके बारे में प्रकाश डाल पाएंगे तो अच्छा होगा।
वैसे जैन साहित्य जो है धर्म प्रचार प्रसार के लिए ही किया गया हो, फिर भी तेलुगु साहित्य में जैन साहित्य के लिए भी एक निर्दिष्ट ये है, स्थान है।
जी जी
उनके द्वारा लिखित जो नियम ग्रंथ जो है, अपने जैन नियम ग्रंथ जो है, और इधर उधर आंध्र में देखने को मिलते हैं, जैसे अनंतपुर जिले में
अच्छा
और अमरावती के आसपास भी बौद्ध आरामों में, विहारों में वे लोग इन ग्रंथों को लिखा करते थे। और इन ग्रंथों में धर्म प्रचार के लिए ही वे लोग नियमों को बनाकर उनको उन्हीं को लिखते थे। फिर भी इसमें तेलुगु भाषा का प्रयोग है और इस पर तेलुगु संस्कृति का भी प्रभाव है। तो
अच्छा अच्छा
इस कारण से तेलुगु साहित्य में साहित्य साहित्य लोक में इसके लिए भी मान्यता दी जाती है।
ऐसा माना
और
जाता है कि जैन अनुयायियों ने कन्नड़ में भी और मलयालम में भी काफी साहित्य रचना की है, तो जैन साहित्य जो इन्होंने इसका तेलुगु और कन्नड़ का कोई संबंध है आपस में जैन साहित्य के द्वारा?
तेलुगु और कन्नड़ जो है आपस में मतलब भाषा भाषा में, चूंकि ये सारे द्रविड़ भाषाएं होने की वजह से ये द्राविड़ भाषाओं में मतलब कहीं एक मेल तो होगी ही। तो इस ढंग से भाषा में मतलब एक समानता हम देख सकते हैं, एक थोड़ी सी समानता हम देख सकते हैं। वैसे आसपास में होने की वजह से भाषा तो वैसे प्रचार प्रसार में एक जैसी तो नहीं होती, बदलती जाती है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव तो नहीं हो सकता, ये तो हम जानते ही हैं। तो
जी
इस
जी
ढंग
जी
से इस ढंग से ना, जैसे कि जैन धर्मावलंबी जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें उनके धर्म प्रचार प्रसार के जो भी बातें हुई हैं उस पर अब उस प्रांत के उस प्रदेश की संस्कृति का भी प्रभाव उस पर रहा है। और तेलुगु कन्नड संस्कृतियों का मेलजोल तो देखना ही होता है, देखने को मिलता
अच्छा,
है।
अच्छा अच्छा अच्छा, जब आपने जैसा आपने बताया तेलुगु के आंध्र में राजवंश की भाषा भी रही है, और जब हम तेलुगु राजवंश की बात करते हैं, आंध्र की बात करते हैं, तो विजयनगर का नाम बड़ी प्रमुखता से आता है। तो तेलुगु साहित्य में प्रचार प्रसार में विजयनगर राजवंश एवं तेनाली राम का बताया जाता है कि प्रमुख योगदान रहा है, अगर इस बारे में आप कुछ विस्तार से बता पाए तो बेहतर होगा।
हाँ सर, विजयनगर राजाओं में श्री कृष्ण देव राय को हम तेलुगु साहित्य की बात आती है तो उनका नाम लेना होता है। वैसे विजयनगर राजाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश में जितना जितनी अभिवृद्धि हुई है, जितने विकास क्रम को हम देख सकते हैं, हर ढंग से उनके शासन काल में आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा ही शासन हुआ। और कृष्ण देव राय जो है उनके द्वारा तेलुगु साहित्य के लिए बहुत ही प्रोत्साहन मिला।
अच्छा,
उनके अपने उनके अपने आस्था।
राधिका जी, आपने बताया कि जैसे तेलुगु राजवंशों की भाषा रही है, और जब हम तेलुगु की बात करते हैं और राजवंश की बात करते हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि विजयनगर राजवंश ने और तेनाली राम ने तेलुगु के प्रचार प्रसार में काफी प्रमुख योगदान उन्होंने दिया है। इस बारे में अगर हमारे श्रोताओं को विस्तार से बता पाएंगे तो बेहतर होगा।
सर कहना हो तो विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो श्री कृष्ण देव राय का नाम मुझे लेना होता है।
जी, जी।
श्री कृष्ण देव राय जो है, वैसे ही विजयनगर राजा लोग सब लोग आंध्र प्रदेश में विकास क्रम में, विकास मतलब अभिवृद्धि के क्रम में देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा शासन किया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी अभिवृद्धि हुई है उनके शासन काल में।
जी जी,
विजयनगर राजा ओम में श्री कृष्ण देव राय का नाम इसीलिए सुनने में आता है क्योंकि कृष्ण देव राय जो थे वे खुद कवि थे। उन्होंने अच्छा, अमुक्त माल्यदा अच्छा। नाम की एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उन्होंने बहुत सारे कवियों को अपने आस्थान में रखकर बहुत ही प्रोत्साहन दिए थे। उनमें से एक है तेनाली रामा, इनका अच्छा, नाम अच्छा। उनके साथ साथ नवरत्न नाम के बहुत सारे कवि थे उनके आस्थान में, फिर भी इनका नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इनकी युक्तिपूर्ण ढंग से किसी भी समस्या का समाधान देना और चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग या चमत्कार पूर्ण ढंग से किसी भी विषय को सुलझाना, इन चीजों के लिए वे प्रसिद्ध हैं। और अब राजा के लिए कोई भी समस्या आ जाती है तो उन समस्याओं का समाधान वे प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से कोई कोई काम करके, मतलब चमत्कार पूर्ण ढंग से कोई काम करके उसको सुलझाकर बताते थे। जैसे हम अच्छा, बच्चों अच्छा, को बताते हैं इसका परिणाम ये होता है, करके दिखाना, किस प्रकार करके दिखाते थे। इस प्रकार इनका मतलब जिस प्रकार वे विषय ज्ञान रखते थे उतना ही वे चमत्कार पूर्ण ढंग से विषय को समझाने की क्षमता भी रखते थे। अच्छा, इस कारण से तेनाली रामलिंगन का नाम लोगों में प्रसिद्ध हो गया। और वैसे अच्छा, बहुत बड़े कवि भी थे, उनका उनका साहित्यिक ज्ञान भी बहुत ही अच्छा था और उनको विकट कवि मानते हैं उनकी अच्छा, इस चमत्कार और युक्तिपूर्ण बुद्धि के कारण। विकट कवि इनके लिए एक मान लीजिए एक उनको एक क्या कहते हैं राजा के द्वारा दिया गया एक
सम्मान था उनका,
सम्मान जैसा मान लीजिए। जी सर अच्छा। लोग मतलब लोग उनको प्यार से इसे बुला लेते थे विकट कवि।
अच्छा,
विकट
अच्छा,
कवि आप अगर लिख के देखेंगे तो पीछे से देखिए या आगे से एक ही जैसा हम पढ़ सकते हैं।
अच्छा,
विकट कवि।
हाँ अच्छा,
पीछे से पढ़े या आगे से विकट कवि वैसे ही पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये समस्या को जिस ढंग से आप दे दो वो जैसे भी दे दो उसको सॉल्व कर देंगे, उसको सुलझा अच्छा, देंगे। इस विषय को उनको इस प्रकार बुलाया जाता था।
अच्छा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो जो विजयनगर राजवंश में कृष्णदेव राय के शासन काल में तेलुगु प्रमुखता से आम जनमानस से जुड़ी रही।
जी सर, खुद विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु को इतना प्राचुर्य मिला और कृष्णदेव राय कहते थे कि देश भाषलंदु तेलुगु लेसा, इसका अर्थ होता है देश की सारी भाषाओं में तेलुगु ही बहुत अच्छी भाषा है, मीठी भाषा है, बहुत ही अच्छी भाषा है। तो खुद कृष्णदेवराया ने यह बात कही है। जी सर,
ये बात सही कही बात है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में तेलुगु भाषा को सबसे मीठी भाषा माना गया है।
जी सर, ये भी एक बात है कि तेलुगु के नाम के पीछे जैसे कि वो तेने तेने मतलब शहद होती है सर, सो शहद जैसी मीठी भाषा है इसीलिए तेलुगु और उससे तेलुगु नाम आ पड़ा है। ये भी है एक मतलब इतिहास में ये भी बात है तेलुगु नाम जी, के जी, पीछे।
जी 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 अच्छा इतना सुनने में आया कि तेलुगु साहित्य का जो अन्य भाषाओं में प्रचुर मात्रा में इनका अनुवाद किया गया है और अन्य भाषाओं से भी तेलुगु भाषा में प्रचार काफी अनुवाद किया गया है, तो आपके विचार से तेलुगु किस तरह साहित्य तेलुगु साहित्य अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ है, अगर इस पर आप रोशनी डाल पाएंगे बता पाएंगे तो बेहतर होगा, जिससे लोगों को पता चले, हमारे श्रोताओं को पता चले कि तेलुगु साहित्य की किस किस रूप में अन्य भाषाओं में उपलब्ध है।
हाँ सर, वैसे तेलुगु भाषा से अन्य भाषाओं में अनुवाद सारे द्रविड़ भाषाओं में मान सकते हैं। अच्छा। वैसे कन्नड़ में बहुत सारे अनुवाद हुए हैं लेकिन हिंदी में इतना नहीं देखने में आता है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत सारे अनुवाद हुए हैं। अच्छा। विश्वनाथ सत्यनारायण का ये पड़गलो देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, महान ग्रंथ है जिनका अनुवाद हम अंग्रेजी में देख सकते हैं। शायद अच्छा। इसके पीछे कोई ऐसा कारण भी हो सकता है कि तेलुगु के लिए विश्व भर में एक मान्यता मिले, इसके पीछे वो भी कारण हो सकता है, लेकिन वैसे अंग्रेजी में जितने अनुवाद हुए हैं उतने हिंदी में देखने में नहीं मिलते।
जी बड़ा आश्चर्य की बात है कि तेलुगु का अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया लेकिन भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर कम किया गया। हेलो राधिका जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तेलुगु भाषा के साहित्य का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो काफी प्रचार प्रसार किया गया लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसको इतना नहीं प्रोत्साहित किया गया।
नहीं कर सकते सर, वैसे अनुवाद तो हुए हैं, अनुवाद तो अच्छा। बहुत सारे हुए हैं लेकिन ज्यादा अंग्रेजी में हुए हैं, ये बात कह रही थी।
अच्छा 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 ये बात है। अच्छा राधिका जी, आधुनिक तेलुगु साहित्य को आप किस रूप में देखते हैं, आज तेलुगु साहित्य किस स्तर पर है और किस रूप में है, आपको आप इसे किस रूप में देखते हैं और आधुनिक साहित्यकारों के बारे में कुछ प्रकाश डाल पाए तो बेहतर होगा, हमारे श्रोता जान पाएंगे।
जी सर, वैसे आधुनिक युग में भी सारी प्रक्रियाओं को हम देख सकते हैं तेलुगु में, जैसे कि प्राचीन काल से जिस दिन प्रक्रियाओं को हम आगे ले आते रहे हैं उन सारी प्रक्रियाओं को हम देख सकते हैं, लेकिन अच्छा। एक है कि कविता लेखन में जो है छंदोबद्ध भाषा का प्रयोग कम होता जा रहा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, छंदोबद्ध भाषा
जी, छंदोबद्ध भाषा मतलब चंद का प्रयोग कविता में कम होता जा रहा है, और
छंदोबद्ध अच्छा
चंद का प्रयोग जी, और जो नई प्रक्रियाएं जो है उनको स्थान देते जा रहे हैं।
अच्छा, अच्छा।
कई सारी नई प्रक्रियाएं या काव्यों के लेखन में, कविताओं के लेखन में नई नानी कहते हैं, मुगलू कैसे, जैसे बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं हैं, और जैसे कि हम हाइकू के बारे में बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं इधर उधर, हाइकू के बारे में हाइकू प्रक्रिया भी हम तेलुगु में देख सकते हैं, और नानी जो हम कह रहे हैं ये बहुत नई प्रक्रिया है, आचार्य एम गोपी के द्वारा ये नानी प्रक्रिया को आगे ले मतलब उन्होंने इसको पहले बनाया है, और ये अच्छा। जो है चार पंक्तियों में लिखी जाती है, और जैसे कि हम हाइकू में 17 वर्णों को लिमिट करना होता है, 17 ही अक्षर होना चाहिए यह हम पढ़ते हैं, तो इसमें 20 से 25 शब्द होना चाहिए, ये अच्छा। एक नियम है। इस प्रकार कविता लिखी जाती है। या नानी जो है नावी नीवी, नावी का अर्थ होता है मेरा और नीवी का अर्थ अर्थ होता है आपका, मतलब मेरे और आपके अनुभवों को मिलाकर जो कविता लिखी जाती है, मतलब लोगों के सबके अनुभवों को, हाँ वो नानी, मतलब पहले अक्षर को ना नी, पहले अक्षर को लेकर
नावनी हो
जी,
जी जी
ना
जी
नावी नीवी,
अच्छा नावी नीवी ना जी जी
तो
जी
पहले अक्षरों को लेकर नानी, और नानी का अर्थ जो होता है छोटे बच्चों को नानी बुलाते हैं तेलुगु में,
अच्छा अच्छा
छोटे
अच्छा
बच्चों को जैसे कि मुन्ना हम कहते हैं हिंदी में, उसी प्रकार तेलुगु में नानी बुलाते हैं।
जी जी
तो इसको प्यार से, मतलब अपना, मतलब मानस पुत्र मान लीजिए, मानस पुत्रिका मान लीजिए, उन्होंने
अच्छा
उसको जन्म दिया है इसीलिए उन्होंने नानी नाम रख लिया है प्यार से।
अच्छा अच्छा
तो
इस तरह से नानी जो जो नानी प्रक्रिया हुई वो इस तरह से हुई कि मैं अपनी भाषा की बात कर रहा हूँ और आपकी बात कर रहा हूँ और दोनों बातों को काव्यात्मक रूप में रखा गया है।
जी सर, जी जी वही है। और एक मोगलू एक नई प्रक्रिया है, ये तो
जी
बिल्कुल नई प्रक्रिया, मैंने बहुत कम पढ़ा है इसके बारे में भी। और ये प्रक्रिया जो है भीमपल्ली श्रीकांत एक अध्यापक है प्रोफेशनली, और क्या का श्री गणेश किया है, और इसमें तीन पंक्तियां होती हैं और उसमें एक पांच पांच शब्द एक एक पंक्ति में होना जरूरी है। तो
अच्छा,
इस प्रकार की एक प्रक्रिया है मोगलू। मोगलू का अर्थ होता है कलियां,
अच्छा कलियां, अच्छा
हिंदी में हम कलियां जी।
जी जी जी
तो मतलब ये जैसे नानी नाम उन्होंने अपनी मानस पुत्रिका को दी है, उसी प्रकार मोगलू नाम इन्होंने रख लिया है, मतलब
अच्छा,
अपने
अच्छा।
मन से जो जिसका उद्भव हुआ है।
अच्छा अच्छा अच्छा
इस प्रकार कई सारी नई प्रक्रियाएं भी हो रही हैं काव्य लेखन में। और वैसे उपन्यास के नाम, उपन्यास का नाम आ जाए तो बहुत सारे लोग, एंडमूरी वीरेंद्रनाथ ले लीजिए, और आप बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं, उनका उनके बहुत सारे उपन्यास वैसे सिनेमा में बनाए गए हैं, जैसे हम हिंदी में देख सकते हैं वैसे उपन्यासों का फिर सिनेमा के रूप में चित्रित कर,
चलचित्र रूप में देख
इस
सकते
प्रकार
हैं।
जी, चित्र रूप में देख सकते हैं।
अच्छा अच्छा
हर एक प्रक्रिया, नाटक भी है, रंगमंच का तो बहुत ही वैल्यू दिया जाता है तेलुगु में, वो भी है। बल्लारे राघवा नाम तो बहुत सुनने में आता है,
अच्छा
प्राचीन काल से भी जी, और इनके नाम पर कई ऑडिटोरियम्स वगैरह भी हम देख सकते हैं।
बल्लारे राघवा
तो
ये इसी से संबंधित है, बल्लारे के पास जो राघवेंद्र देवस्थान है जो, जो, जो
रंगमंच से संबंधित है सर, रंगमंच से संबंधित है
जी जी जी
वे
जी।
खुद नाटकों में हाँ पात्र लेते थे हाँ जी।
अच्छा अच्छा अच्छा
और वे इसके लिए प्रसिद्ध है कि वे मतलब महिला पात्र पोषण, अगर वे महिला पात्रधारी के रूप में, हम जानते हैं कि पहले मतलब प्राचीन काल में तो वैसे स्त्री महिला लोग जो है मंच पर नहीं आते थे, हाँ तो पुरुषों को महिला के रूप में वेश धारण करके फिर वहां पर जाना होता था।
अच्छा,
जब बल्लारी राघवा एक महिला का रूप धारण कर लेते थे तो कोई पहचान नहीं पाते थे कि ये पुरुष हैं, इस ढंग से वे दिखते थे। तो इसके इससे मतलब जो भी पात्र वे लेते थे वे इतने ही अच्छे, मत महिला ही महिला भी हो या पुरुष भी हो, इतना अच्छा उनका रंगमंच पर
तो बल्लारे राघवेंद्र ने तेलुगु भाषा के साहित्य को नाटक के द्वारा जनमानस से जोड़ा। राधिका जी, जैसे मैं समझ पाया हूँ कि जो बल्लारे राघवेंद्र है उन्होंने साहित्य को नाटकीयता के जरिए से आम जनमानस से जोड़ा है इसको।
जी सर, बल्लारी राघवा इनका नाम है, बल्लारी राघवा।
अच्छा अच्छा
इन्होंने हाँ इन्हों ये बहुत ही ऐसे आदमी है कि ये जिन जो भी पात्र धारण कर लेते हैं उस पात्र में लीन हो जाते थे।
अच्छा,
तो
अच्छा।
इस ढंग से वे हाँ इस ढंग से वे रंगमंच के द्वारा लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कहा जाता है। आजादी के दौर में भी इन्होंने बहुत ही ऐसा कोशिश की कि रंगमंच के द्वारा लोगों को इकट्ठा करके आजादी के संग्राम में भाग लिए।
तो तेलुगु साहित्य ने आजादी के संग्राम में इस तरह से अपना योगदान दिया,
अपना योगदान दिया है। कंदुकूरी वीरेश लिंगम पंतलू, इन सब के नाम आजादी के संग्राम के दौर पर हम सुनने में आते हैं ये सारे।
ये जो राघवेंद्र मठ और बल्लारी राघव एक ही चीज है, अलग अलग है?
अलग है सर,
दोनों अलग अलग
अलग है, अलग है।
अच्छा अच्छा
जी।
राधिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ज्ञान और एवं काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे श्रोताओं को दी। इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें तेलुगु साहित्य के बारे में जो मैं नहीं पूछ पाया तो आप बताएंगे तो बेहतर होगा।
तेलुगु साहित्य की बात हम कहें तो ऐसे लोग हैं जिन जिनकी भाषा की उत्कृष्टता को हम देख सकते हैं, उसी जगह हम भाषा को इतने सरल रूप में भी देख सकते हैं।
अच्छा,
हम अगर श्री श्री नाम बहुत सुनने में आया होगा आपको, आप जी, सुने भी होंगे
जी,
श्रीरंगम श्रीनिवास राव, इनका पूरा नाम है श्रीरंगम श्रीनिवास राव। हाँ सर, इनकी कविता को आप सुनेंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ ये भी एक कविता जैसी बन सकती है। ये लिखते हैं, आड़पिल्ला अग्गीपुर टकनरहम।
अच्छा अच्छा,
बहुत हल्की सी भाषा मान लीजिए, बहुत हल्की सी भाषा, मतलब जैसे कि
अच्छा।
सुनते ही जो भी हो समझ ले, छोटा बच्चा भी समझ ले। आड़पिल्ला का अर्थ होता है हाँ बच्ची लड़की, आड़पिल्ला अग्गीपुल्ला का अर्थ होता है मैच स्टिक, जो भी ले लो कविता करने के लिए अनर्ह नहीं है।
हर चीज कविता में
कविता करने के लायक जी सर, तो हर चीज कविता में लाने लायक है ये कहते हैं। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों को भी वे कविता में ला पाए, और वैसे ही उनका एक महाप्रस्थानम आप उपन्यास अगर पढ़ेंगे तो इसमें आजादी के लिए, आजादी के दौर में हो या सामाजिक कुरीतियां जो भी हैं, उन सबसे आगे बढ़कर हमें कैसे एक जैसा समाज, मतलब एक उत्कृष्ट समाज को लाने के लिए किस प्रकार कोशिश करना चाहिए,
इसके
लिए बहुत ही अच्छा वर्णन उसमें मिलता है। और वैसे काव्य नाटक वगैरह बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिनका नाम हम मतलब बहुत कम समय में हम बोल भी नहीं सकते। वैसे मैं एक बात कह सकती हूँ, तेलुगु में जितना साहित्य का उद्भव हुआ है और हो भी रहा है, यह किसी भी भाषा में, मतलब ऐसे मैं नहीं कह सकती कि किसी भी भाषा में नहीं हुआ है, लेकिन अपने ढंग से देखा जाए, मतलब अपने अपने ढंग से हर एक भाषा में है, लेकिन तेलुगु भाषा में जो है बहुत उत्कृष्ट रूप से हो रहा है और हुआ है।
और तेलुगु वैसे भी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा के रूप में स्थापित है।
जी सर, वैसे हाँ सर, भारत में द्राविड भाषाओं में बहुत सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में।
अच्छा, बोलिए। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे।
और हाँ सर, बस वही मैं कह रही थी कि भाषा की दृष्टि से भी मधुरता होने की वजह से ना लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं।
हाँ।
उस भाषा की मधुरता की वजह से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। और वैसे हिंदी और द्राविड भाषाओं का मेल होने की वजह से जैसे जी, मैं जी, जब जी, बोल रही थी कई सारे शब्दों को आप भी समझ पा रहे हैं, जब चूंकि आप तेलुगु को नहीं जानते फिर भी आप समझ पा रहे हैं, तो इससे लोगों को इकट्ठा करने की शक्ति तेलुगु में भी है। आप अगर राजभाषा की बात लाएंगे तो यहाँ शायद यह बात सही नहीं है, बोलने लायक नहीं बात नहीं है, फिर भी मैं ला रही हूँ। राजभाषा के लिए जब बात हो रही थी तो तेलुगु भी अपना एक मतलब अपना नाम लेकर खड़ी हुई थी, मतलब उसको चुनौती देने के लिए, हिंदी भाषा को चुनौती देने के लिए तेलुगु भी खड़ी थी।
मतलब राजभाषा का नाम आया था तो तेलुगु भाषा पर भी विचार किया गया था।
जी सर, हाँ सर, हाँ सर,
अच्छा,
हाँ सर,
अच्छा।
उसका दूसरे स्थान पे तेलुगु को रखा गया था।
आपका बहुत बहुत
दूसरे स्थान पे तेलुगु को रखा गया था जी, मतलब लोगों को बहुत जल्दी इकट्ठा करने की शक्ति।
हाँ, वैसे भी तेलुगु भाषा का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने जैसा ही है, क्योंकि हम जब उत्तर से आते हैं तो पहले तेलुगु भाषा आती है, बाद में द्रविड़ की अन्य भाषा को जानना जी। राधिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने तेलुगु भाषा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण सूचना, इतनी अच्छी सूचना, इतनी रोचक सूचनाएं हमारे श्रोताओं को दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं का इससे ज्ञान वर्धन अवश्य होगा। हम आपसे जुड़े रहेंगे, आगे भी जुड़ेंगे और तेलुगु भाषा के बारे में और जानकारी आपसे लेने के लिए नए कार्यक्रम करने का सोच सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।
दोस्तों, हम सभी ने बीते कुछ महीनों में वो दृश्य देखा है जिसकी कल्पना हमने कभी की ही नहीं थी। इन परिस्थितियों ने सभी को कहीं ना कहीं तोड़ा है, लेकिन कुछ लोग कोरोना वॉरियर बनकर हमारे सामने आए और उनसे हमें प्रेरणा मिली। चुभन पर इतने ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी से आप सभी परिचित ही हैं और हम सब उनका बहुत सम्मान और उनसे बहुत प्यार करते हैं। वे कोरोना योद्धा के रूप में हमारे सामने आए हैं और बहुत जल्दी हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा कि उनकी प्रेरणादायक बातों को हम उन्हीं के द्वारा सुन सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे अगले कार्यक्रम में जनरल साहब से मिलने का इंतजार करिए।